केवल ज्ञान पान। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोग पिछले दिनों से लगातार पूजा के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। पूजा का अनुष्ठान जितना बाहरी दिखाई देने वाला है, उतना ही अंतरंग में घटित होने वाला भी है। जहां बाहर में मूर्ति और अष्ट द्रव्यों का आलंबन हम लेते हैं और अपने इस पूजा के अनुष्ठान को करते हैं, वही अंतरंग में जिसकी मूर्ति है, उस मूर्तिमान के गुणों का आराधन, लेकिन गुणों का चिंतन, स्मरण, ये हमारे अंदर निरंतर चलता रहता है। साकार का आलंबन हमें उस निराकार अपने आत्मस्वरूप की तरफ ले जाने वाला है, इसलिए पूजा साकार से निराकार की तरफ जाने की एक यात्रा है। हम इस पूजा के दौरान किसी मूर्ति विशेष को नहीं पूजते हैं, हम मूर्ति में जिन गुणों की स्थापना की गई है, जिस वितरागता की स्थापना की गई है, उस वितरागता की पूजा करते हैं। सामान्य रूप से लोग अपने आप को मूर्ति पूजक मानते हैं, उर्दू में उसे बुत परस्ती कहते हैं। हम लोग बुत परस्त नहीं है, हम लोग सिर्फ मूर्ति को पूजने वाले लोग नहीं हैं। हम मूर्ति में विराजे, मूर्ति में स्थापित मूर्तिमान के गुणों की आराधना करते हैं। मूर्ति तो सिर्फ एक आलंबन है और उस प्रक्रिया को हम चाहें तो ऐसे ही बहुत भावनात्मक रूप से पूरी कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से क्रिया पूरी करने के लिए भी हमें बाह्य आलंबन जरूरी है और उसके लिए आठ द्रव्य चुने गए हैं, जिनको माध्यम बनाकर हम अपने भावों को भगवान के गुणों में एकाग्र करते हैं। उन आठ द्रव्यों का कोई महत्व है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। वे ही आठ द्रव्य और उसी क्रम से क्यों चुने गए, इसके पीछे कोई ना कोई एक व्यवस्थित और सुनिश्चित ज्ञान तो रहा होगा। एक कोई विज्ञान उसके पीछे छुपा होगा, एक कोई भावनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया उसके पीछे छुपी होगी, तब तो हमने वो द्रव्य अपने पूजा की प्रक्रिया में शामिल किए हैं। हम देखें कि संसार में भी, हम अपने लौकिक कार्यों में भी इन्हीं आठ चीजों का उपयोग करते हैं। जिन जिन का विवाह हुआ है वे इस प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। विवाह में अब पद्धतियां बदल गई हैं तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक स्टैंडर्डाइज प्रक्रिया हुआ करती थी विवाह की, उसमें भी यही आठ द्रव्य उपयोग में लिए जाते थे। फिर चंदन से टीका लगाया जाएगा, फिर अक्षत उसके टीके में चंदन के ऊपर चिपकाए जाएंगे, फिर फूल उठा करके पुष्प फेंके जाएंगे, फिर थोड़ा सा कोई भी मीठी चीज मिठाई मुंह में दी जाएगी, नैवेद्य दीपक से आरती उतारी जाएगी, कोई भी सुगंधित वस्तु शरीर में सुगंध की तरह धूप की तरह लगाई जाएगी, श्रीफल हाथ में दिया जाएगा। और कौन सा बचा? और तुम्हें बचा कौन? ये आठवें द्रव लौकिक क्रियाओं में भी हम मंगल द्रव्य मान करके उपयोग में लेते हैं। इन्हीं द्रव्यों को लौकिक रूप से भी हम अपने कार्यों में शामिल करते हैं। हमारी भाव दशा बदलने पर यही द्रव्य हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक बनने वाली पूजा की प्रक्रिया में भी सम्मिलित किए गए हैं। भगवान के सम्मुख इन आठ द्रव्यों को हम चढ़ा करके क्या भावना भाए, बहुत स्पष्ट है कि हमारे भीतर तो एक ही भावना है हमेशा से, कि हमें संसार से पार होने का मार्ग मिले, हम संसार से पार हो सकें। संसार से पार तो हम तभी हो सकेंगे जब हमें आठ अंगों से युक्त दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होगी, और हमारे उस दृष्टि की निर्मलता ज्ञान और आचरण के एक रूपता होने पर हम आठों कर्मों को नष्ट करके अपने उस परम पद को प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन के आठ अंग में से एक भी कम हो तो वह कार्यकारी नहीं है, शरीर में आठ अंगों में से एक भी भंग हो जाए तो वह शरीर फिर धार्मिक अनुष्ठानों के योग नहीं रहता। आठ कर्मों में से एक भी कर्म जीव के शेष रह जाए तो संसार से पार नहीं होता। पूजा में भी आठ द्रव्य ऐसे ही पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। एक आध दो द्रव्यों से पूजा हो जाएगी ये तो काम चलाऊ पूजा कहलाएगी, वास्तव में पूजा तो आठ द्रव्यों से ही संपन्न हो। जल चढ़ाते हैं, क्या भावना है जल के पीछे? जल को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, और हम चाहते हैं कि हमें वो केवल ज्ञान प्राप्त हो। उसके लिए जरूरी है कि हमारे ज्ञानावरण कर्म का अत्यंत अभाव हो। हम जल समर्पित करके भगवान के सम्मुख, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, ये भावना भरते हैं कि मेरे जिस ज्ञानावरणी कर्म के उपस्थित होने की वजह से मुझे अपना वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ये ज्ञानावरणी कर्म क्षय को प्राप्त हो और मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। सामान्य रूप से जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, भवाकार विनाशनाय चंद्रम, अक्षय पद प्राप्त करे अक्षतम, यह सब कहां ले जाती हैं चीजें? उसी परम पद की तरफ ले जाते हैं ये सारे द्रव्य। लेकिन एक एक द्रव्य के साथ एक एक कर्म को नष्ट करने की प्रक्रिया भी आचार्य भगवंतों ने बताई है। जल ज्ञानावरण के अभाव का प्रतीक है। यह हुआ आध्यात्मिक अप्रोच, यह हुआ उस जल का आध्यात्मिक महत्व। क्या कोई लौकिक महत्व भी है? हम विचार करें कि जल हमें क्या संदेश देता है। जल का स्वभाव शीतलता और निर्मलता है, बाहर से उसमें मलिनता या कि उष्णता आ सकती है, लेकिन उसका अपना स्वभाव तो शीतल और निर्मल है। हमें जल एक संदेश और देता है अपनी शीतलता और स्वाभाविक निर्मलता की तरफ दृष्टिपात करने का। और इतना ही नहीं, हर स्थिति में जल हर एक चीज में मिक्सअप हो जाता है, वो हमें एक सामान्य संदेश देता है कि संसार में ऐसे ही हम सबके साथ मिलजुल करके रहें। क्या भगवान के सम्मुख जल समर्पित करते हुए ऐसी उज्ज्वल और निर्मल भावना आ पाती है? ये विचार करना चाहिए। जल तो हम रोज चढ़ाते हैं, आनी चाहिए। मेरे ज्ञान वर्णी कर्म का क्षय होकर मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे मेरी शहद निर्मलता और शीतलता प्राप्त हो, मैं सबके बीच आत्मवत सर्वभूतेषु सबको अपने जैसा ही मानकर सबके बीच न छोटे बड़े का अहंकार न दीनता ऐसे रहूं, मिलजुल करके रहूं। मैंने किया उसका श्रेय किसी और को दे सकूं, कोई और करे और उसका श्रेय किसी और को दे सके, ये कहना था हम मिल के रहना, जबकि दूसरे के किए का श्रेय हम खुद ले लेते हैं, जो हमारी आदत होती है। हिलमिल के रहने का मतलब यह होता है कि अपना किया हुआ होने पर भी श्रेय दूसरे को देना और दूसरा खुद करके किसी और को श्रेय दे रहा है अपने कार्यों का। अभी तो अपने किए दोष को दूसरे पर थोपते हैं और दूसरे के की अच्छी चीज का श्रेय खुद ले लेते हैं। क्या सीखा हमने जल चढ़ा करके? हिल मिल के रहना भी नहीं सीखा। रोज जल चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, जो कि सब में मिक्स हो जाता है। जिस रूप में आप उसे बुला रहे, जिस चीज में, उसी में मिक्स हो जाता है। हम चंदन चढ़ाते हैं भगवान के सामने। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि संसार में चंदन को, गंगा के जल को, मोतियों के हार को, इन सब को शीतल माना है, लेकिन वास्तव में तो शीतल क्या है? न शीतलास चंदन चंद्र रश्मयो न गांग मंभो न चहार यष्टया यथा मुनेस्ते न वाक्य रश्मया शमान दुगर्भा शिशिरा विपर्शिता। हे भगवान शीतलया, संसार में चंदन को, चंद्रमा की चांदनी को, मोतियों के हार को और गंगा के जल को शीतलता देने वाला माना गया है, पर ये तो क्षणभर को शीतलता देते हैं। आपकी वाणी वास्तव में शाश्वत शीतलता शीतलता देने वाली है। आपकी वाणी हमें आत्मदर्शन कराने वाली है और आत्मदर्शन से शीतलता प्राप्त होती है। किसी को अपनी खोई हुई निधि दिख जावे, प्राप्त नहीं भी हो, दिख भी जावे, तो जो संक्लेश था, जो संताप था, वो मिट जाता है। ऐसे ही संसार में आत्मदर्शन होने पर हमारा संताप मिट जाता है। भाव आताप के नष्ट करने के लिए ही तो हम चंदन चढ़ाते हैं, और उधर आत्मदर्शन तो दर्शनावरणी कर्म का क्षय करने के लिए से प्राप्त होने वाली अपनी सहज अवस्था है। सो हम चंदन चढ़ा करके दर्शनावरणी कर्म के अभाव की कामना करते हैं और आत्मदर्शन की भावना लाते हैं, और चंदन का लौकिक संदेश भी लेना चाहें तो बहुत स्पष्ट है कि दूसरे के संताप को हरने वाला है चंदन। घाव पर चंदन लगा देने पर शीतलता होती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घाव पर मरहम लगा करके दूसरे को घाव दिन भर में दे देते हैं? चोट तो नहीं पहुंचा देते हम, जबकि चोट पहुंच गई हो तो हमें तो चंदन के समान उस पर मलहम और उसे शीतलता देने का उपक्रम करना चाहिए। इधर जब मैं भगवान के सामने चंदन चढ़ाऊं तो मेरे मन में ये ध्यान बना रहे सारे दिन कि मैंने भगवान के सामने चंदन चढ़ाया है, मेरे जीवन से अब किसी को कोई घाव न पहुंचे। अगर पहुंच गया हो उसके किसी कर्म के उदय से, तो मैं उस पर चंदन की तरह शीतलता देने का काम करूं। चंदन चढ़ाकर हम एक तरफ अपने आत्म विकास और दूसरी तरफ लोक व्यवहार दोनों का सामंजस्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। रोज तो चढ़ाते हैं भैया ये ध्रुव, लेकिन कोई बहुत संदेश हम ले पाते हैं ऐसा हमारे जीवन से तो नहीं दिखाई पड़ता। जीवन से दिखना चाहिए कि हाँ आज मैंने दर्द चढ़ाई थी, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है। रोज इस प्रक्रिया को हम दोहराएं और अपेक्षा रखें अपने आप से, किसी और से नहीं, कि हाँ मेरे जीवन में ये द्रव्य समर्पित करने पर उनसे मिलने वाला संदेश घटित होता हुआ दिखाई पड़े। उधर हम अक्षत चढ़ाते हैं, क्या चाहते हैं हम अपने जीवन में? अखंड होना चाहते हैं, कौन टूटा टूटा जीवन जीना चाहेगा? लेकिन क्या करें, संसार में हमारी आदत हो गई है, घर में किसी और तरह से रहते हैं, बाजार में किसी और तरह से, दुकान में किसी और तरह से, मंदिर में तो ऐसे दिखाई पड़ते जैसे कि हमसे सज्जन कोई ना हो। ये हमारा जो टूटे टूटे जीवन जीने का ढंग है, उसमें कहीं एक रूपता, एक सारपना कहीं आता ही नहीं है, अखंडता कहीं आती ही नहीं है। मैं जहां जैसा हूं वैसा हमेशा वैसा ही हूं, मेरे भीतर जीवन की एक धारा निरंतर बहती रहती है, अबाध बहती है। मैं उस अबाध सुख को इस टूटे टूटे जीवन में प्राप्त ही नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि मुझे अब्याबाद सुख प्राप्त हो, वो तो मेरे वेदनीय कर्म के अभाव में ही उत्पन्न होगा। तो फिर मैं अक्षत चढ़ा करके अपने वेदनीय कर्म के अभाव और अपने अब्याबाद सुख की कामना करता, ये भावना रखता हूं कि मैं बाधा से रहित सुख प्राप्त करूं, मेरा जीवन निर्वाण सुख प्राप्त करे। मैं ऐसा टूटा टूटा जीवन जीते जीते अब संसार में थक गया हूं। भगवान के सामने अक्षत चढ़ाते समय इस तरह हमारा मन ऐसी भावनाओं से भर जावे। अक्षत की अपनी एक विशेषता होती है, चावल के ऊपर का कवर निकालने के बाद और नाली में हटाने के बाद वे अक्षत या चावल, अखंड चावल प्राप्त होते हैं। वे चावल बो देने के बाद फिर से उगते नहीं है। ठीक ऐसे ही अक्षत के समान हम अगर जन्म मरण से पार होकर वो परम पद प्राप्त कर लें जो हमेशा शाश्वत बना रहेगा, तो यही तो अक्षत चढ़ाने का उद्देश्य था। हम हटाएं ऊपर की आवरण, हम हटाएं अपने भीतर के राग द्वेष की लालिमा, ये हमें चावल अक्षत एक प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। चावल को दो उंगलियों के बीच कितनी भी जोर से दबाएं, दबाना मत, बहुत दर्द होने लगेगा, टूटेगा नहीं, लेकिन वो अखंड है। आप ऐसे करके तोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों कोनों पर आप उसे कितना भी प्रेशर दें, टूटेगा नहीं चावल, वो उसकी अखंडता का प्रतीक है। आप किसी और माध्यम से तोड़ सकते हैं, अलग बात है, लेकिन वो अपने आप में अखंड है। ठीक ऐसा ही मैं चाहता हूं कि चावल के समान मैं अपने सारे बाह्य आवरण, अंतरंग के राग द्वेष और इन सबको हटाकर जन्म मरण से पार होकर अपनी अखंडता को, उस अव्याबाद सुख को प्राप्त कर सकूं। यही तो संदेश हमें अक्षत चढ़ाते समय लेना चाहिए। हम चाहें तो अक्षत के द्वारा यह संदेश आसानी से ले सकते हैं। भगवान के सामने अक्षत चढ़ाने के बाद फिर हमने द्रव्य चुनी है, पुष्प। पुष्प को काम वासना का प्रतीक माना गया है सामान्यतः, और मेरे भीतर जो काम वासना है वो मेरे मोह की परिणति है। मैं चाहता हूं कि मेरे भीतर से ये काम वासना, इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये सब नष्ट हो जाए, तब फिर तो मेरे भीतर पड़ा हुआ मोह नष्ट मुझे करना पड़ेगा। मैं भगवान के सामने पुष्प चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर ये कामना करता हूं कि मुझे मेरे मोहनी कर्म का अभाव हो और जो एक अखंड या शाश्वत जो दृष्टि संपन्नता है, दृष्टि की निर्मलता है जिसे हम सम्यक्त कहते हैं, वो मुझे प्राप्त हो, ताकि मैं इन कामनाओं और इच्छाओं से मुक्त होकर के अपने उस वास्तविक स्वरूप को देख सकूं, तभी तो मुझे बाह्य चीजों में ही पांच इंद्रिय मन के विषयों में ही सुख दिखाई पड़ता है, मुझे वो दृष्टि वो श्रद्धा प्राप्त हो जाए जिसमें कि मैं अपने उस आत्म सुख को देख सकूं। वो तो तभी प्राप्त होगी जब मेरा मोह हटेगा और मुझे शायद सम्यक की प्राप्ति होगी, तब जाकर के मैं इन आकांक्षाओं से ऊपर उठ पाऊंगा। लेकिन आकांक्षाओं से ऊपर उठूं तब जाकर के मुझे मोहनी के अभाव में वो क्षायक सम्मित की प्राप्ति होगी। मैं छोटा सा एक फूल चढ़ाकर, मैं पुष्प चढ़ाकर भगवान के सामने इतनी बड़ी भावना धारण, इतनी बड़ी कामना, कभी आता है मन में ऐसा भाव हम तो चढ़ाते जाते हैं पुष्पम निरुपामती स्वाहा, लेकिन कभी मन में विचार ही नहीं आता है कि मैंने अपने मोह को नष्ट करने के लिए ये फूल चढ़ाए हैं। अगर हम इतना बड़ा संदेश नहीं भी लेना चाहें तो छोटा सा लौकिक संदेश भी ले सकते हैं कि फूल का जीवन एक दिन का होता है, दो दिन का होता है, फिर उसके बाद उसे मुरझा जाना है और टूट करके गिर जाना है। क्या हम इतना संदेश नहीं ले सकते कि इतने छोटे से जीवन में भी और फूल हम सब के लिए क्या दे करके जाता है? अपनी कोमलता दे के जाता है, अपनी सुगंध दे करके जाता है, अपना आकर्षण दे करके जाता है, बताइएगा। इतनी सारी चीजें इतने छोटे से जीवन में, एक दो दिन के जीवन में, और हम क्या दे सके आज तक अपने इतने 50, 60, 70 साल के जीवन में किसी को? कभी कोई खुशबू हमारे जीवन से किसी को मिली है? कभी कोई कोमलता हमारे जीवन से दूसरे को उसका एहसास हुआ है? भावनाओं की नहीं हो पाया है। मैंने पुष्प तो रोज चढ़ाए हैं। मैं अभी इन द्रव्यों को किस रूप में चढ़ाना चाहिए इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अलग अलग रूपों में ये द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। कोई चावलों को पीले रंग में रंग कर चलाता है, कोई सीधे भगवान के सम्मुख फूल चढ़ाता है। पद्धतियां हैं, दोनों प्रकार की पद्धतियां आगम में कही गई हैं। कई जीव सचित्त द्रव्य से डरे हैं, सो अचित्त द्रव्य से भगवान की पूजा करे हैं। कई जीव तो फल फूल इत्यादि लाए के भगवान के सम्मुख चढ़ाए हैं, कई जीव तो धान का फूला लाए के भगवान के सम्मुख चढ़ाए हैं, कई जीव तो दाल भात रोटी भगवान के सम्मुख चढ़ाए हैं। सो पूजा तो द्रव्यांतरी न हो गए, पूजा तो भावांतरी हो गए। दोनों पद्धतियां सनातन हैं। सदा सुखलाल जी रतन करण शालोकाचार्य की टीका में ये उल्लेख करते हैं। इसलिए हमने कौन सी द्रव्य चुने हैं ये हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने जो द्रव्य चुनी है वही श्रेष्ठ है और सबको वही चुनना चाहिए, यह दुराग्रह है। मेरी अपनी चॉइस है, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि मैंने अपने विवेक से और पूजा की द्रव्य चुनी है। मुझे अपने भाव लगाने के लिए आलिंगन लेना था इसलिए मैंने आलिंगन दिया है, लेकिन मैंने जो आलिंगन दिया है, कल के दिन ऐसा ना हो कि मेरा मन तो काले रंग के पाषाण की मूर्ति पर लगता है तो मैं सारे देश में काले पाषाण की मूर्तियां बनवा लूं कल के दिन, कहीं ऐसा ना हो मेरा आग्रह नहीं। ये तो आलिंगन है, मुझे पीतल की प्रतिमा या सोने की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा पर पूजा करने में आनंद आता है, किसी को पाषाण की प्रतिमा से आनंद आता होगा, ये अपनी अपनी चॉइस है। प्रतिमाएं तो धातु की बनती है, प्रतिमाएं तो पाषाण की बनती है, प्रतिमाएं तो कास्ट की बनती है, लेकिन उसमें जो चीज उपयोग में लाई गई है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो उसकी मुख मुद्रा पर वितरणता है वो महत्वपूर्ण। ठीक इसी तरह से मैंने द्रव्य जिस तरह से चुने हैं वो आलंबन मेरे लिए अपनी वितरणता में कारण बने, बस इतना ही है। वो जब को लेकर के कहीं कोई विवाद या विमोचन में पड़ना वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आज हम वर्तमान में इन्हीं चीजों को लेकर के जितने उलझे हैं, काश हम थोड़ा सा अपने उस उलझन को दूर करने के लिए अपनी भावनात्मक विशुद्धि बढ़ाते तो सारी उलझने दूर होकर के हम सुलझ गए होते, इस संसार से ही सुलझ गए होते। लेकिन क्या करें, हमारे छोटे छोटे से राग द्वेष उनसे ही हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं। चर्चा वितरागता की भले ही कर लेते हैं लेकिन छड़े सड़े से राग द्वेष, छोटी छोटी चीजों से होने वाले राग द्वेष से नहीं बच पाते हैं। बहुत आश्चर्य लगता है, हमारा पूरा जीवन बहुत थोड़े से क्षण होते होंगे दिन भर में जिसमें कि हम वितरागता का एहसास कर पाते होंगे या कि धर्मानुराग से युक्त होते होंगे, बाकी सारे क्षण तो अपने ही किसी ईर्षा राग, ईर्षा और द्वेष या कि विषयानुराग में ही व्यतीत होते रहते हैं। कोशिश करें ये आलंबन कितने अच्छे मिले हुए हैं, इनसे संदेश लेकर के। द्रव्य इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि एक छोटी सी पाखुड़ी भेखा प्रमोद मत्ता कुसमे नहीं केन राजग्रह, राजग्रही में विपुलाचल पर्वत पर विराजे भगवान महावीर स्वामी की पूजा के भाव से अत्यंत प्रसन्न दिया दर्दो यह क्षणावासित स्वर्गीय गुणगुण समृद्ध सुखनिधि। एक भेखा या कि बर्बर एक मेढक में भी फूल की पाखुड़ी अपने मुंह में दबा करके विपुलाचल पर भगवान महावीर स्वामी की पूजा करने की भावना भाई थी, लेकिन महाराजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे मरण को प्राप्त होकर भावों की निर्मलता के कारण राजा सैनिक से के पहुंचने से पहले देव परिवार को प्राप्त करके भगवान के समोशरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंच गया था वो मैडम। उतने से वो तो ड्यूटी हो गई थी, फूल की पाखुड़ी वो तो ड्यूटी हो गई थी, अब तो ये व्रत हो गई पूजा नहीं। शक्यानुष्ठान जिसके लिए जो शक्य है वो वैसा अपनी पूजा की द्रव चुनेगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और निर्मल द्रव चुनेगा। तो द्रव महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे अपने भाव जो मैंने उस द्रव को आलंबन बनाने के लिए बनाए हैं वो भाव महत्वपूर्ण है। फिर हम नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान के सम्मुख, ये नैवेद्य हमारे प्राणों का आधार बन जाता है। वैसे तो पांच इंद्री मन वचन काय आयु और श्वासोच्छ्वास इन दस प्राणों से हमारा जीवन चलता है, लेकिन इन दस प्राणों के स्थिर रहने में अन्न भी कारण बनता है, वो भी एक ग्यारहवें नंबर का प्राण है अन्नम वै प्राणा। ये नैवेद्य मेरे हमेशा प्राणों को सहयोगी देने वाला रहा, लेकिन इस नैवेद्य के अभाव में मैं शुदा की वेदना से अत्यंत पीड़ित रहा। क्या करूं भगवान, जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए इस पीड़ा से मैं बच जाऊं। नैवेद्य चढ़ा करके मैं क्या कामना करूं। वैसे सामान्य रूप से शुदारोग विनाशना नैवेद्यम कहते हैं, लेकिन ये शुदा तो मुझे हमेशा लगेगी, जब जब मैं भाव धारण करूंगा तब तक मुझे ये शुदा की वेदना सताएगी। मैं सिर्फ ये चाहूं कि मुझे शुदा की वेदना ना हो तो फिर मुझे मेरी भावना थोड़ी और ऊंची उठानी पड़ेगी। शुदा की वेदना का भाव तो तभी होगा जब मैं कि चारों गतियों के इस चक्कर से बच सकूं। भाव धारण ही ना करूं, और भाव धारण में कौन सी चीज कारण बनती, आयु करूं। मैं चाहता हूं भगवान ये नैवेद्य चढ़ा करके अपने आयु कर्म को नष्ट करके और हमेशा के लिए इस छुदा की वेदना से मुक्त होकर के अपने अवधानमत गुण को प्रकट करना चाहता हूं। आयु कर्म के अभाव में अवगाहन की सामर्थ्य उत्पन्न होती। अभी तो इस जीव को चीटी की अवगाहना, हाथी की अवगाहना, जिस देह में जाना पड़ा उसी की अवगाहना में रहना पड़ता है। मैं तो अवगाहनत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, वो मेरा अपना निजी गुण है, वो आयु कर्म के अभाव में मुझे प्राप्त होगा। मैं ये नैवेद्य चढ़ा करके अपने आयु कर्म का ही अभाव करना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, मैं ध्यान रखूं अपने आस पास पड़ोस में कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नैवेद्य जो भोजन सामग्री है उसके अभाव में किसी होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे महाव्रति अनुव्रति मुनि और शावक उन सब के लिए सबसे पहले मैं आहार दान इत्यादि दे करके उनके निरंतराय आहार होने के बाद ही अपने भोजन के लिए तैयार हूं। ये निवेद मुझे इतनी बड़ी प्रेरणा देता है। इतना ही नहीं, कोई भी दीनहीन और भूखा भी मेरे भोजन करते समय अगर सामने दिखाई पड़ जाए तो उसे पहले संतुष्ट करूं, फिर उसके बाद मैं अपना भोजन करूं। एक बहुत लौकिक सा संदेश भी हम इस नैवेद्य से चाहें तो ले सकते हैं। वैसे तो भाव से पार हो जाए तो ये सारी चीजें तो सब अपने आप ही आ जाएंगी, लेकिन जब तक भाव से पार नहीं हुए हैं तब तक इस भाव में भी ऐसा कुछ कर लें जिससे कि भाव से पार होने का कोई उपाय हो सके। उसके लिए ये लौकिक संदेश भी लिया जा सकता है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। अपने पेट में दो दाने डालने की फिक्र तो सबकी रहती है, लेकिन दो दाने के अभाव में कोई भूखा ही सो गया है उसे देखने का वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बड़ा संसार है, कहां कहां तक क्या करेंगे। अरे भैया मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सबके पास जाए, क्या सिर्फ भावना नहीं बा सकते हैं क्या? भावना बाने में क्या, मेरे मुंह में ग्रास देने से पहले मैं 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज जिसमें से जो 6-7 गुणस्थान में विचरण करते हैं, आहार की प्रक्रिया में सम्मिलित है, उन सब के निरंतराय आहार हो, प्राणी मात्र अन्न के अभाव में पीड़ित ना हो, कैसी सद्भावना करके मैं अपना भोजन शुरू नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। नैवेद्य चढ़ाते समय क्या ये भावना नहीं भाई जा सकती? भाई जा सकती, इसमें कहीं कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। एक घटना पड़ी थी, मैंने एक भिखारी अपनी जीवन साथी के साथ भीख मांग रहा है, एक कॉलोनी में एक घर के सामने जाकर उसने आवाज दी कि अम्मा बहुत भूखा हूं, एक रोटी मिल जाए। पुराने जमाने की बात है, अब वर्तमान में तो भीख के माध्यम से बेईमानी भी हो सकती है, लेकिन क्या करें। उस माँ ने जो कि भोजन बना रही है, रोटियां सेक रही है, सोचा कि इसे भी एक दे दें, लेकिन यह जो नई ताजी बना रही हूं यह तो ना दें, कोई बासी पड़ी हो तो देखें। सबका ऐसा ही ध्यान जाता होगा, किसी का नहीं जाता होगा। तो देखी तो आधी ही रोटी थी और वो भी बहुत कड़ी हो गई थी। अब दिख रहा है कि अत्यंत वृद्ध है, दांत भी है नहीं, फिर भी मन तो एक करता था कि दे दे गरम गरम, क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन नहीं। 100 तर्क दिमाग में आएंगे, 100 तर्क, देने का भाव आते ही साथ मन में सैकड़ों बातें आएंगी, अरे ऐसे कैसे दे दूं, और कल के दिन ये रोज आने लगेगा तो क्या करेंगे। भले ही अपने शराबी बेटे को पंखा झलकर के भोजन कराएंगे गरम गरम, फिर कई बात कह दी मैंने, मैं बहुत सोचता हूं कि नहीं कहूंगा, लेकिन वो निकल जाती है। वर्तमान में ऐसा देख करके कैसे रोने लगता है, इसलिए निकल जाती है, बहुत दुखी मन से निकल जाती है, आपको कोई लाना देने का नहीं होता। लेकिन देखो तो हमारे चित्त की प्रगति तो देखो, हमारे मन की बात तो देखो कि कैसे तर्क देता है। वहां तर्क नहीं देते हमारे जवान, इस तरह की बेईमानी करते हैं, और दूसरे को तो हम रोटी देने से पहले उसकी ईमानदारी और बेईमानी का थर्मामीटर से नाप लगाते हैं। नहीं दी वो आधी रोटी, दे दी गर्म नहीं दी, पर मन में एक विचार आया कि बाजू वाले से पूछ ले, शायद उसके यहां बासी पड़ी हो तो वो दे देंगे। सो बाजू वाले के यहां जाके पूछा कि है क्या बासी, तो उन्होंने कहा कि इतनी चिंता क्यों है, क्या वो भीख मांगने वाले तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं क्या? वो भी ऐसा तर्क दे करके उससे बरी हो गए। जब तक उस बाजू वाले के यहां पूछ करके लौटे तब तक तो वे दोनों गड्ढ और हैंडपंप के ऊपर पानी में उस रोटी को गला गला करके खा करके जा चुके थे। अब जीवन भर के लिए फांस की तरह ये बात मन को सालती है कि अरे दे भी होती एक रोटी तो क्या जाए। चुप जाते हैं हम, रो चढ़ाते हैं, जबकि नैवेद्य रो चढ़ाते हैं भगवान के साथ। अभी तक हमने फूल चढ़ाए थे वहां पर, इतने बड़े बड़े बहुत, लेकिन उसमें से एक उठा करके कोदन के भूखे को मैं ऐसे नहीं पूछू, ऐसे मैं दूंगा, क्या पता वो क्या करता होगा। अब तो ये तक सोचना पड़ता है अपने को कि ये जो सब चला रहे हैं वो भगवान को थोड़ी जा रहा है, वो तो माली जी के यहां जा रहा है, इसलिए जरा सस्ते वाला चढ़ाओ, हिसाब से चढ़ाओ, पूछ लो कि कितने का आएगा पहले फिर चढ़ाओ। दोनों वाले ने तो दिया है कि श्रेष्ठ भोग हम लगा करके चढ़ाना, लेकिन श्रेष्ठ द्रव को मैनेज करने वाला देखता है कि कैसे उसको मैनेज, जैसे अपने घर गृहस्थी कर रहा हो ऐसे करते हैं, मंदिर में भी, मंदिर के द्रव में भी इसी तरह से नई चीज आएगी हमसे बिना पूछे मत लाना, हम बताएंगे कौन सी दुकान से लाना, उससे हमें कितना कमीशन मिलेगा, बना रखते हैं वहीं से लाना। इतनी प्रक्रियाएं सब देखते रहते हैं संसार में, मंदिरों में, एक कहीं एक ही जगह वो ऐसा नहीं, सब दूर एक ही मामला, लेकिन ये हमारा मन ही तो है, उसके उसको देख रहे हैं अपन की, देखो तो हमारा मन इतनी छोटी सी चीज में कैसा अटक जाता है। होना चाहिए था कि मैंने तो समर्पित कर दी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नैवेद्य, और वो भी दूसरे के लिए भी, जिस नैवेद्य को खा करके वो अपने प्राणों की रक्षा करेगा, वहां पर वहां भाव था कि मैं आयु कर्म का नष्ट को नाश करूं, जबकि आयु कर्म के नाश करने की जगह पर भाव ये आ जाता है कि सस्ती चढ़ाओ, माली जी के यहां तो जानी। कितनी निकृष्णा हो जाती हमारे अपने भावों की, विचार करें अपन, स्वयं विचार करें, और फिर नैवेद्य के बाद क्या चढ़ाते हैं भैया, दीप चढ़ाते हैं। तज्ज्योति परम ज्योति, वह परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति जयवंत हो, जिसमें पति भक्ति पदार्थ मालिका यत्र, जिसमें कि लोकालोक सकल चराचर स्पष्ट प्रतिभाषित होते हैं, वो ज्योति वास्तव में मैं प्राप्त करना चाहता हूं। वो ज्योति कैसे प्राप्त होगी, ये छोटा सा दीप जला करके मैं भावना भाता हूं उस ज्योति को प्राप्त करने की। तो दीप जला करके हम क्या चाहते हैं, वह ज्योति कैसे प्राप्त होगी, किसको प्राप्त हुई है, अरंत और सिद्ध भगवान को ही वो परम ज्योति केवल ज्ञान की प्राप्त होती है। उसका तो अपना कोई आकार नहीं होता, उस ज्योति का, वह ज्योति तो निराकार है। मैं तो अभी इस देह में बैठा हुआ हूं, इसलिए मेरा कोई ना कोई आकार है। मैं चाहता हूं कि इस देह से अतीत हो जाऊं, और उस देह अतीत या शरीर अतीत उस परम ज्योति को प्राप्त कर सकूं, तो जरूरी है कि इस देह को बनाने वाले नाम कर्म का ही अभाव कर दूं। तब देखिएगा, दीप चढ़ाते समय मेरी ये उज्ज्वल कामना है, मेरी ये उज्ज्वल धारणा है कि मेरे नाम कर्म का अभाव हो, ताकि मुझे वो शरीर अतीत अवस्था, वो परम ज्योति प्राप्त हो सके। सामान्य रूप से तो मोहांधकार विनाशनाय दीपम प्रसिद्ध है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने एक दृष्टि और दी है, इन आठ कर्मों से, इन आठ द्रव्यों को जोड़ करके नाम कर्म के अभाव में मैं जैसे अपने शरीर अतीत अवस्था को प्राप्त करता हूं, मैं ये दीप चढ़ा करके वही कामना करता हूं। और लौकिक संदेश देना चाहें इस दीपक से तो सहज मिलता है कि वह अंधकार को नष्ट करता है और हमें प्रकाश की तरफ ले जाता है। देखें अपने जीवन में कि क्या सचमुच हम अपने अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का कोई मार्ग अपना चुके हैं या नहीं। ये कि ऐसा तो नहीं कि हमने अपने जीवन से दूसरे को कभी प्रकाश दिया ही ना हो बल्कि दूसरे के जीवन में अंधेरा ही डाला हो। नहीं, अब हम अपना जीवन बदल देंगे, हमारे जीवन से किसी के जीवन में अंधेरा फैले ऐसा हम नहीं करेंगे। हो सके तो हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में भी प्रकाश फैले। मैंने बहुत पहले लिखा था कि दोनों सिरों पर जलती हुई मसाल की तरह रोशनी बिखेर करके मैं चाहूंगा कि अल्प समय में ही मरण को प्राप्त हो जाऊं तो उसे श्रेष्ठ मानूंगा, लेकिन गीली बिसूर बिसूर कर जलने वाली और देर तक जलने वाली और लोगों की आंखों में धुआं भरने वाली लकड़ी की तरह जलना पसंद नहीं करूंगा। ज्यादा समय तक भले ही जलती है लेकिन धुआं फैला करके जाती है। मेरा जीवन इस तरह का हो, भले ही अल्प हो, लेकिन दूसरे के जीवन में प्रकाश देखे जाने वाला हो, अंधेरा और धुआं दे करके फैला करके जाने वाला ना हो। निर्धूम वर्ते अपवर्जित तैल पूरा कृत्रिम जगत त्रयमिदं प्रगति करोषि गम्यो न जाति मरुताम चलिता चलानाम दीपो अपरा तमसि नाथ जगत प्रकाश। एक आप ही है इस तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक। हमने तो बहुत से दीपक देखे हैं जिनमें बाती डालना पड़ती है, तेल भरना पड़ता है, जिन्हें जहां रख दो वहीं प्रकाश होता है, जिन्हें हवाएं आकर के बुझा देती हैं। लेकिन आप उस परम ज्योति को प्राप्त कर चुके हैं भगवान, जिसमें ना तेल भरना पड़ता ना बाती डालना पड़ती है, ना छोटा सा स्थान जिससे प्रकाशित होता, बल्कि तीनों लोक जिससे प्रकाशित होते, जिससे कोई हवा बुझा नहीं सकती है। मैं उस परम ज्योति को प्राप्त करने के लिए ये छोटा सा दीप आपके चरणों में रख रहा हूं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं करना, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि दीपक तो वही कहलाता है जिसमें ज्योति हो, बाकी तो सब उसका बहाना है दीपक का। सो अब अपना तो बहाना ही करने की आदत रही है तो अपन बहाना ही करते हैं। मैं ये नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप ये कहो कि मैं कोई दीपक जलाने की वकालत कर रहा हूं। पर दीपक तो दीपक है जिसमें से कि ज्योति, जितना जी चीजों का आग्रह रहा उतनी ही चीजें बढ़ी, जितना निषेध रहा उतना ही आकर्षण हुआ है, जितना इन चीजों का निषेध किया गया है आज उतना ही ज्यादा इन चीजों का आकर्षण। और अब तो, पहले तो अखंड दीप इक्का दुक्का कहीं देखने में आते थे, अब तो 24-24 घंटे जलने वाले दीप हर जगह शुरू हो गए। पूजा में से भले ही दीपक गायब हो गया हो, रंगी हुई चिटकें आ गई हो, लेकिन दीप अभी भी अब तो 1,008 दीपों से सामान्य अवसरों पर आरती होने लगी। कभी कभार भगवान के सम्मुख एक दीप जला के रख दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जितना निषेध किया है उतना ज्यादा। क्या हुआ इसका परिणाम? यही परिणाम, दुष्परिणाम हुआ है। नहीं, विधि निषेध पर टिका हुआ धर्म नहीं है, धर्म तो वास्तविकता पर टिका हुआ है। ये तो चीजें बदलती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। मुझे तो मूलभूत जो उसके पीछे उद्देश्य है उसका ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैं अटक गया हूं कि कौन सा लाला चढ़ाऊं। मुझे तो इस बात का विचार करना चाहिए था कि इसको चढ़ाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की पूर्ति ना हो और चीजें चढ़ाई जाती रहे, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। मुझे तो उद्देश्य की पूर्ति करनी है। अगर मैंने कभी जलता हुआ दीप रख दिया है तब भी मैंने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है। कभी मैंने चिटकों को पीला करके उसी को दीप मान करके आरती उतारी है भगवान की, तो भी मैंने कोई बहुत अपराध नहीं कर लिया है, या कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर ली। दोनों ही चीजें उपलब्धि तो तब कहलाएगी कि जब मुझे वो केवल ज्ञान ज्योति प्राप्त हो जाए। मेरी पूजा तब सार्थक कहलाएगी, मेरे ब्रह्म चढ़ाना तब सार्थक कहलाएगा। उद्देश्य तो ये था। फिर चढ़ाते हैं धूप। धूप का स्वभाव है कि सब दूर फैलती है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी के पास ही जाए, गरीब के पास ना जाए, छोटे के पास ना जाए, बड़े के पास ही जाए, दरिद्र के पास ना जाए, धनवान के पास ही जाए, उसकी सुगंध कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन मैं तो अभी पूरा जीवन इसी भेदभाव में व्यतीत करता हूं, सो किस वजह से, मेरे गोत्र कर्म के कारण मेरे भीतर ये विविधताएं देखने में आती हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दीनहीन है, कोई धनवान है, ये सारे भेद मेरे उच्च गोत्र नीच गोत्र की वजह से ही आते हैं। मैं तो चाहता हूं इस गोत्र कर्म से ही पार हो जाऊं, ये धूप चढ़ा करके मैं इस ऊंच नीच के भाव से, भेदभाव से ही रहित होने की कामना करता हूं भगवान, तो मेरा धूप चढ़ाना सार्थक हो जाएगा। नंदीश्वर दीप इत्यादि में अवगाहना तो मुझे याद नहीं है, कितनी विशाल अवगाहना के धूप दान जहां निरंतर देवों की पूजा में उपयोग में आते हैं। अब तो मंदिर से धूप दान कहीं अन्यत्र चले गए, अब धूप दान शेष नहीं रहे। वो जो मंदिर की सुगंध थी वो भी गायब हो गई। अब तो मंदिर में बाजू वाले की खिड़की से बनते हुए भोजन की सुगंध आती है, और या कि पंखा चलता रहता है तो दूसरे के सेंट और दूसरे के सिर में डले हुए खुशबूदार तेल की सुगंध आती है। मंदिर की अपनी जो सुगंध है वो गायब हो गई। मंदिर में प्रवेश करते ही लगे कि अब मैं मंदिर में आ गया हूं, यहां की गंध बिल्कुल अलग ही है। यहां तो चंदन केशर अगुरु की ही गंध आती है, यहां अंध को अन्न कोई गंध नहीं। यहां तो ध्वनि भी घंटे की मधुर ध्वनि आती है, मैं तो बाहर के कोलाहल को छोड़ करके मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। ये छोटे छोटे से उपकरण थे, ये छोटे छोटे से माध्यम और साधन थे, मीडिया था जिसके माध्यम से मैं अपने भावों को परिवर्तित करता था। मैंने अपने भावों को परिवर्तित करने का ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये सारी चीजें धीरे धीरे करके और व्यर्थ मालूम पड़ने लगी। क्योंकि जब कोई चीज हमें उपयोग करने का ढंग ना मालूम हो तो व्यर्थ ही हो जाती है, और जो उपयोग कर लेते हैं उनके लिए वो छोटी सी चीज भी बहुत सार्थकता देती है। मैं ऐसा ही अपना जीवन बनाऊं कि इस भेदभाव से मेरी बच सकूं। धूप चढ़ा के आ रहा हूं तो दिन भर मेरे जीवन में ये भेदभाव कम से कम आवे, आए ही नहीं ये तो बहुत अच्छा ही है, और अगर आता भी है तो मैं सावधान हो जाऊं कि क्या रखा हुआ है। ये तो देह है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, ये सब तो उस कर्म के उदय की वजह से है। मेरा स्वभाव तो इन सब से रहित होने में ही है। और आखिरी में फल चढ़ाते हैं भगवान के सामने। संसार में कितने कर्म तो करते हैं, भले बुरे सब प्रकार के, उन सब का फल भोगना पड़ता है मुझे। भले का फल भला, बुरे का फल बुरा। मैं कुछ ऐसा कर्म करूं जिससे कि मुझे इन शुभाशुभ समस्त कर्म फलों से मुक्ति मिल जाए, मुझे वो चीज प्राप्त हो जाए, वो फल प्राप्त हो जाए जिसमें ये सुख और दुख ना हो। तो आत्म को हित है सुख, सुख सो आकुल ताबुन कहिए, और आकुलता शिव माही में पाते शिवमग लाग्यो चाहिए। तब तो फिर मुझे समझ में आ गया भगवान कि अगर मैं ये संसार के शुभ अशुभ फल पाना नहीं चाहता हूं, इससे ऊपर उठना चाहता हूं, निराकुलता पाना चाहता हूं, तो मुझे मोक्ष फल चाहिए है। वो मोक्ष फल मुझे कैसे प्राप्त होगा, मेरे तो बहुत अंतराय इन कर्म के फल के भोगने में ही पड़ जाते हैं। मेरे शुभाशुभ कर्म में भी अंतराय अगर बीच में पड़ जाता है तो मुझे फल की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो चाहता हूं कि ये अंतराय कर्म ही नष्ट हो जावे, ताकि मैं और वास्तव में उस फल को जो कि मुझे प्राप्त करने योग्य है उसे प्राप्त कर सकूं। सबसे पहले मोहिनी कर्म जाता है, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म जैसे ही गया, फिर देखिएगा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, मोक्ष तो अब नियम से होगा ही होगा। इसलिए अंतराय का अभाव होने पर समस्त कर्मों का अभाव हुआ मानो, तो अंत में रखा कि मैं अंतराय कर्म के अभाव के लिए ये मोक्ष या कि मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए ये फल अर्पित करता हूं भगवान। और संसार के इन छोटे छोटे से कर्म जनित फलों में हर्ष विषाद न करने की सौगंध लेता हां भगवान के सम्मुख कि मैं छोटे छोटे से मेरे पुण्य के उदय में मुझे मेरे अनुकूल फल मिलता है तो बड़े हर्षित हो जाता हूं, और जब मेरे पाप का उदय आता है, मुझ पर विपत्ति और संकट आता है तो विषाद से गिर जाता हूं। अरे ये तो सब कर्माश्रित है, ऐसा विचार करके मैं समता भाव से उन संसार में मिलने वाले कर्म के फलों को झेल सकूं, ये सामर्थ्य लेकर के लौटूं। मैं फल चढ़ा करके आठ के अलावा कोई नौवां द्रव्य नहीं है, लेकिन हमारा तो मन है, अभी कुछ ऐसा लगता है कि शेष है, अभी तो पूरी तरह से अपने को समर्पित नहीं किया है, तब फिर क्या करूं? तो आठों द्रव्यों को अपने भावों की चाशनी में भाग करके और मैंने एक द्रव्य और निर्मित कर लिया। आठ द्रव्य अपने आप में इंडिविजुअल बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, लेकिन उन सबको मिला देने पर तो उनकी कीमत बहुत प्राप्त बड़ी हो गई। तो अर्घ के मायने होता है मूल्यवान, अत्यंत मूल्यवान। ये आठों द्रव्य मिलकर के अत्यंत मूल्यवान हो गए हैं, और मिलते कब हैं? मिलते तो तब हैं जब इनको किसी बाइंडिंग एजेंट के साथ में बाइंडअप किया जाए, इनको मिक्सअप किया जा सके। ये तो सब अलग अलग हैं, इनको बांधने वाली कौन सी चीज है? वो मेरे भाव है। जैसे कि तिली में चाशनी डाल करके और उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, तब क्या कहलाती है? वो लड्डू बन जाता है कि पट्टी बन जाती है? अब अलग अलग करो उसमें से, नहीं कर सकते हैं, सब मिक्सअप हो गए। ठीक ऐसे ही मैं अपने भावों की चाशनी में इन आठों द्रव्यों को पाक करके एक द्रव्य और बना के लाया हूं, अर्घ। क्या चाहता हूं? अनर्घ पद प्राप्त, अमूल्य वह पद। ये तो सब मूल्यवान द्रव्य है, लेकिन मैं तो चाहता हूं अमूल्य अर्घ चढ़ा करके मैं अनर्घ की प्राप्ति चाहता हूं। इस तरह हमने इन द्रव्यों को चुना और इन द्रव्यों से संदेश लिया, भैया द्रव्य चुनते समय इतनी ही सावधानी रखें कि वे मुझे संदेश देने वाले हैं, मुझे उसमें उलझना नहीं चाहिए। हमारे साथ मंदिर में एक पंडित जी पूजा करा करते थे, वृद्धावस्था थी, लेकिन अपने घर से सूखी द्रव्य लाते थे, यहीं पर धो करके अपनी द्रव्य बनाते थे। हमने कभी उन्हें दूसरे से अपनी द्रव्य दिलवाते नहीं देखा। ये उदाहरण मेरे जीवन भर मुझे याद रहेगा, जब जब भी पूजा की चर्चा करता हूं वो छवि उनकी ज्यों की त्यों सामने आ जाती है। वो अपनी द्रव्य चुपचाप धो रहे हैं। मैं एक दिन अपनी पूजा करके लौट रहा था, मुझे इशारे से बुलाया, यहां आओ भैया। पंडित जी बताइए कुछ काम है क्या? भैया जब धो दो, आज हमारी थोड़ी तबीयत नरम है, हमसे धुलती नहीं है। पहले द्रव्य धोना सिखाया जाता था, मलमल के कपड़े में अक्षत धो जाते थे ताकि टूट ना पाए, वैसे नहीं धो जाते थे जैसे आज धो जाते हैं। चावलों पर पानी डाल करके मलमल के कपड़े से हाथ का स्पर्श भी ना हो, क्योंकि हाथ की रगड़ से टूट जाएंगे, मलमल के कपड़े में धीरे धीरे पानी डाल करके उनको धोया जाता था, तब उज्जवल अक्षत बनते थे। उन्हीं में चंदन डाल करके फिर उसी से उनको पीला रंग दिया जाता था, दीप बना लेते थे। तो उतनी ही सावधानी से वो धोते थे। उन्होंने पता नहीं मुझे क्या सोच करके कि इससे धुलवाएंगे, सावधानी से धो देगा। धोते धोते मुझे लगा कि पंडित जी की आंख कमजोर होने से आज पंडित जी फल रखना भूल गए। हमने पंडित जी से कहा, पंडित जी में फल तो है ही नहीं है, कहते हुई ये देखो कोई हुई है। हमने कहा इनसे क्या कहें, बुजुर्ग बार हैं है? हमने कहा फिर एक बार इशारा किया, पंडित जी उसमें फल है नहीं, उसमें बनाम भी नहीं है और सुपारी उपारी कुछ नहीं है उसमें। कहते कहा भैया किसमिस है क्या नहीं हो गए, कहते हाँ। हमने कहा किसमिस तो है, हमारे तो जय फल है, वो फल की जगह पर किसमिस चलाते थे। किसमिस तो समझते, सब समझते, अब तो दिन आने वाले हैं वही के पर्यूषण में, तो वही की सब्जी बनेगी किसमिस की, कहे तो सब्जी सब बंद हो जाए। अरे तो अच्छी याद करने की चीज है वो। तो हमने पूछ लिया पंडित जी से कि आप बादाम और सुपारी वगैरह फल में क्यों नहीं चढ़ाते, आप यही क्यों चढ़ाते। कहते भैया हमें तो भीतर बाहर किसमिस के जैसा ही मुलायम बनना है, सो हमने तो यही फल चुना है। तो मुझे लगा कि जिसके द्रव्य के साथ परिणाम ऐसे एक नेक है, उसका ही द्रव्य चढ़ाना सार्थक है। हमारा तो सिर्फ इस थाली में से उस थाली में करना है और बाकी कुछ नहीं। भैया सो जिंदगी निकल गई इस थाली में से, इस थाली में पटकते हुए उतने अकेले से नहीं होगा, भीतर भी कुछ हटना चाहिए, भीतर की मलिनता में भी कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन आना चाहिए, भीतर भी थोड़ी सी उज्ज्वलता आनी चाहिए, परिणामों की थोड़ी सी निर्मलता आनी चाहिए। द्रव्य तो तभी सार्थक होंगे, पूजा भी हमारी हमारे जीवन को तभी आध्यात्मिक विकास दे पाएगी जब हम उससे अपना भावनात्मक संबंध स्थापित करेंगे। हम भावना भाते हैं कि ये पूजा हमारे आध्यात्मिक विकास में कारण बने। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वा